नमस्कार। आज हम एक बड़े गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये कि गायत्री मंत्र जो है वो ब्रह्म वर्चस मतलब आध्यात्मिक तेज उसे जगाता कैसे है। इसके लिए हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक उद्बोधन को आधार बना रहे हैं, ब्रह्म वर्चस कैसे जगाती है गायत्री। तो चलिए इसी के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करते हैं।
अक्सर यही लगता है ना कि मंत्र बस दोहराते जाओ, लेकिन पूज्य गुरुदेव का एक विचार मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा कि गायत्री मंत्र की शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में जो बदलाव आता है उसमें है। तो फिर ये जो बार बार जपने की बात है, जप जिसे कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ रटना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, रटना तो बिल्कुल नहीं है। पूज्य गुरुदेव इसे बड़े अच्छे उदाहरण से समझाते हैं, जैसे वो द्रोणाचार्य के शिष्यों वाली कहानी। युधिष्ठिर ने सत्यम वद मतलब सच बोलो इसको सिर्फ याद नहीं किया, उन्होंने उसे जीवन में उतारने का प्रयास किया, जबकि बाकियों ने शायद सिर्फ रट लिया था। तो तोते की तरह मंत्र बोलने से वो कहते सिद्धि नहीं मिलती, ज्ञान जब तक आचरण में ना उतरे तब तक वो प्रभावी कैसे होगा।
ये बात तो सही है, तो फिर बार बार दोहराना क्यों? अगर एक बार समझ लिया, जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया, तो क्या वो काफी नहीं है?
देखिए, यहीं पर जप का मतलब पुनरावृत्ति का असली महत्व सामने आता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार हमारा जो मन है ना, वो जीवन के मूल लक्ष्य को, हम असल में हैं कौन, हमारा उद्देश्य क्या है, इन बातों को बड़ी आसानी से भूल जाता है रोजमर्रा की भागदौड़ में। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, या संगीत में महारत के लिए रोज रियाज करना पड़ता है।
सही,
ठीक वैसे ही जो ऊंचे सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उन्हें मन में गहरा बिठाने के लिए, अपनी आदत का हिस्सा बनाने के लिए बार बार दोहराना यानी जप जरूरी हो जाता है। ये एक तरह से भूलने की जो हमारी आदत है ना, उससे लड़ने का और अच्छे संस्कारों को जमाने का तरीका है।
अच्छा, तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि मानसिक व्यायाम है, ताकि वो ऊंचे विचार हमारी चेतना में गहरे उतर जाएं। और आप कह रही हैं कि इसी लगातार अभ्यास से, इसी प्रक्रिया से फिर ब्रह्म वर्चस्व जागता है।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं कि ब्रह्म वर्चस्व कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर की पवित्रता और चरित्र की जो दृढ़ता होती है ना, उससे पैदा होने वाला तेज है, एक आभा है। और खास तौर पे उन्होंने दो चीजों पे जोर दिया है, धन यानी कंचन और विपरीत लिंग की नारी यानी कामिनी। इनके प्रति जब पवित्र नजरिया होता है, निर्मल भाव होता है, तब ये शक्ति ज्यादा जागृत होती है। उन्होंने गांधी जी का उदाहरण भी दिया है इसके लिए, कहते हैं कि उनके अंदर इतना ब्रह्म तेज था कि चर्चिल ने अपने वाइसराय को कहा था कि भाई उनसे नजरें मत मिलाना, उनकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन है।
अरे वाह, गांधी जी वाला उदाहरण, इससे तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ अंदर की बात नहीं है, इसका बाहरी प्रभाव भी होता है।
बिल्कुल, और देखिये गायत्री माता का जो स्वरूप है उसका प्रतीकात्मक भी यही सिखाता है। उन्हें युवा स्त्री के रूप में क्यों दर्शाया गया है, इसके पीछे भाव यह है कि साधक के मन में, आंखों में पवित्रता जगे, एक मात्र भावना आए, ताकि मानसिक ऊर्जा का बिखराव रुके। हाँ। वो इधर उधर ना भटके। और उनका वाहन हंस क्यों है?
हाँ, हंस।
हंस विवेक का प्रतीक माना जाता है, जैसे वो दूध और पानी अलग कर देता है, ऐसा मानते हैं ना?
हाँ, हाँ, सुना।
वैसे ही विवेकशील व्यक्ति सही गलत, सच झूठ का भेद कर पाता है। और हंस के बारे में ये भी कहते हैं कि वो मोटी चुकता है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है सिर्फ पवित्र कमाई, न्याय की कमाई स्वीकार करना, ईमानदारी। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री की कृपा असल में उन्हीं पर होती है जो इन हंस जैसे गुणों को, मतलब विवेक, न्याय, पवित्रता, इनको जीवन में उतारते हैं, जो सत्य पर चलते हैं।
अच्छा, तो मतलब हंस के गुण धारण करने वाले पर ही कृपा होती है। ये बड़ी गहरी बात है, और ये शायद सत्यवान और सावित्री की कथा से भी जुड़ता है जिसका जिक्र पूज्य गुरुदेव करते हैं, कि सावित्री यानी गायत्री केवल सत्यवान का ही वर्ण करती हैं, है ना? मतलब ये हुआ कि सिर्फ पूजा पाठ कर लेने से, या इतने जप कर लिए, इतना हवन कर लिया, सिर्फ संख्या गिनने से कोई देवी प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी नहीं कर देंगे, जब तक के अंदर शुद्धि न हो, जीवन में सत्य का पालन न हो।
सही कहा आपने, ये बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की पात्रता का सवाल है। और पूज्य गुरुदेव ने जप के मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो बताते हैं कि कैसे कोई भी विचार या ज्ञान हमारी चेतना के अलग अलग स्तरों से गुजरता है, पहले हम सीखते हैं लर्निंग, फिर उसे धारण करते हैं रिटेंशन, फिर जरूरत पड़ने पर याद करते हैं रिकॉल, और अंत में एक अवस्था आती है रिकॉग्निशन की, पहचान की, जहां वो मान्यताएं, वो सिद्धांत हमारी आस्था, हमारी निष्ठा का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, या जैसे रस्सी की लगातार रगड़ से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है।
हाँ, बिल्कुल।
तो जप असल में इसी गहरी निष्ठा को स्थापित करने का, इन संस्कारों को पक्का करने का अभ्यास है।
समझ गया। यानी ये सिर्फ आध्यात्मिक साधना ही नहीं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक अभ्यास भी है,
मन को साधने का विज्ञान।
तो कुल मिलाकर सार ये निकला कि गायत्री साधना सिर्फ मंत्र बोलना भर नहीं है, ये तो खुद को सुधारने का, चरित्र बनाने का और अपने अंदर विवेक जगाने का एक पूरा, एक समग्र विज्ञान है। और वो जो बार बार जप करने की प्रक्रिया है, वो इन ऊंचे आदर्शों को हमारे अंतर्मन में जमाने का तरीका है, ताकि वो आध्यात्मिक तेज, जिसे ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं, वो अपने आप प्रकट हो सके।
एकदम सही समझा आपने, बिल्कुल यही बात है। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में ही कहें तो सच्चा अध्यात्म अगर थोड़े से लोग भी अपने जीवन में उतार लेना, तो वे लाखों को प्रकाशित कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। तो गायत्री उपासना का असली लक्ष्य सिर्फ मंत्र पढ़ने वाला बनना नहीं है, बल्कि उन आदर्शों का, जिनका वो प्रतीक है, उनका एक जीता जागता रूप बनना है।
सचमुच ये एक एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाली बात है।
हाँ, और जाते जाते शायद एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से बैठकर माला लेकर जब शायद ना भी कर पाए, लेकिन अगर वो अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कामों में, अपने रिश्तों में हंस के गुणों को, मतलब विवेक, न्याय और सत्य को पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश करे, तो उसके अपने जीवन पर, उसके अपने अनुभव और उसकी तेजस्विता पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है।